இப்போ எல்லாமே தெரிஞ்சு கோ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم ہمارے دل کے ٹکڑے جیسے عزیز اور پیارے طلبا کے والی حضرات اس وقت میرا چہرہ آپ کی طرف ہے, میں آپ ہی سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ میرے بزرگان دین ظاہر میں میری پیٹھ کے پیچھے ہیں, لیکن وہ میری پشت پناہی کر رہے ہیں. ان کی توجہات اور ان کی دعاؤں کے ساتھ اس وقت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس مجلس کو آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, دنیا اور آخرت میں اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. برادر مکرم حضرت مفتی ابوبکر صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت مفتی صاحب قانون سناتے جا رہے ہیں, اتنے سارے قوانین, आप में से बहुत से हजरात वो हैं जिनका काश्तकारी यानी खेती से ताल्लुक है। बीज डालने के बाद पानी की ज़रूरत होती है, खाद जिसको हम गुजराती में खातर कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो आप लोग एक बात समझते हैं कि जितना पानी और खाद डालना ज़रूरी है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी खेती को नुकसान देने वाली चीज़ों से बचाना। कभी जानवर घुस जाते हैं खेत में, उन जानवरों से रोकने के लिए बहुत खर्चे करके बाड़ बनानी पड़ती है, और अगर आप बाड़ नहीं बनाएंगे तो आपकी कीमती खेती सलामत नहीं रह सकती। ये जो कवानी हजरत मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे, ये कवानीन आपके बच्चों के लिए एक बाढ़, इसके जरिए से ये जो बच्चे जो आपके लिए मुस्तकबिल की भविष्य की दुनिया और आखिरत की खेती है, इस कवानीन की बरकत से उस खेती की इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। और अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए दुनिया आखिरत की खेती बतलाया है। खुद अल्लाह ने इन बच्चों को हमारे लिए खेती से काबिल फरमाया। ये बच्चे हाफिज बनेंगे, आलिम बा अमल बनेंगे, दीनदार बनेंगे, तो माँ बाप के लिए दुनिया में भी इज्जत बनेंगे, कयामत के दिन भी इज्जत का जरिया बनेंगे। और कब ये इज्जत बनेंगे? जब ये बाढ़ होगी, जिसको कवानीन कहा जाता है, जिसके जरिए से आपकी ये खेती फूल जैसे आपके ये बच्चे और इतने नूरानी शक्ल सूरत वाले ये बच्चे बिगड़ने से बचेंगे, तो ये औलाद इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में आपके लिए नाम रोशन करने का जरिया बनेंगे। दूसरी एक बात भी आप हजरात समझते हैं, खेती में पालतू घासे भी बहुत उग जाती है, कांटेदार पौधे भी उग जाते हैं, उसको भी साफ करवाना होता है। इसको हमारे इस इलाके की गुजराती जबान में नींदा मण कहते हैं, नींदना पड़ता है। यानी जो असल खेती आपने लगाई, गेहूँ लगाया, चावल लगाया, उसके साथ जो फालतू घासें उग गई, जो कांटेदार पौधे लग गए, उसको भी साफ करवाना ज़रूरी होता है। अगर उसको आप साफ नहीं करवाएंगे तो जो पानी है, जो खाद डाला जा रहा है, वो जायज जो चीज़ें उगी हुई है वो उसको खा लेगा, और खेती को जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा, बल्कि असल खेती बर्बाद हो जाएगी। ये जो हमको कहा जा रहा है कि मोबाइल से अपने बेटे को बचाओ, ये इस ज़माने का सबसे खतरनाक कांटा है जो आपके इस बच्चे को बर्बाद करने वाला है। सबसे खतरनाक अगर कोई बबूल का दरख्त है, कांटेदार दरख्त है, जो आपके बच्चों की तालीम और तरबियत को बर्बाद कर सकता है, तो इस दौर का सबसे बड़ा कांटा ये मोबाइल फोन है। इससे भी बहुत बचाना अपने बच्चों को जरूरी है। तो ये बच्चे खेती की तरह है, ये उग रहे हैं, इन पर परवान लग रहा है। अगर इनको गलत जानवर आके चरेंगे, कांटेदार घास लग जाएगी, तो ये खेती सही नहीं उग पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को ऐसी गलत चीज़ों से बचाने की मेहनत करें। फिक्र मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बहुत अहम काम के लिए अपना वक्त आज पारित किया। दुनिया में तकाबुल होता है, कंपेयर होता है, तब देखा जाता है भाई आपका बहुत अहम काम है, दुकान है, नौकरी है, मुलाजमत है, सब है, लेकिन अचानक क्या हो गया कि चिल्ला आ गई कि फुलाने करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया। तो आदमी क्या सोचता है, सब काम इस तरफ जनाजे में शिरकत करनी है। यकीन मानिए वालियों में आपसे कहता हूँ, अगर इन बच्चों के अखलाक बर्बाद हो गए, इनका किरदार बर्बाद हो गया, इनकी रूहानी मौत हो जाएगी, अखलाकी मौत हो जाएगी, रूहानी जिंदगी का जनाजा निकल जाएगा। और जीते जी आपके बच्चे मौत से ज्यादा बुरी हालत में हो जाएंगे। इसलिए आज जो आपने अपना वक्त फारिग किया, वहां आपकी जो भी मशगूलियत होगी उससे ज्यादा अहम काम के लिए आप यहां तशरीफ लाए हो, ये यकीन रखो। इसलिए कि अगर आपकी दुकान का नुकसान हुआ, कारोबार का नुकसान हुआ, खेती का नुकसान हुआ, चंद पैसों का नुकसान है, लेकिन ये बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई तो दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। इसीलिए बहुत अहम काम के लिए आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, और ये हुक्म मैं नहीं या मौतनी साहब का ऑर्डर नहीं, ये अल्लाह का आपके लिए हुक्म है। खुदा कुरान में फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम وَأَهْلِيكُمْ نَارًا। ایمان والے اللہ کا فضل ہے آپ اور میں ہم سب ایمان والے ہیں، کہو الحمدللہ خدا نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے۔ اب خدا حکم دے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، گھر والوں کو، فیملی والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو کب ہے اللہ کا کو انفسکم، اور جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو شریعت کے فرائض، واجبات، شریعت کے احکام، شریعت کے قانون سکھاؤ، اس پر عمل کراؤ، شریعت میں جو حرام اور ناجائز ہے اس سے بچاؤ، تب جا کر کے یہ جہنم کی آگ سے بچیں گے اور ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ فرائض واجبات سکھانا، اس پر عمل کرانا، حرام اور ناجائز چیزیں بتلانا اور اس سے بچانا، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر والی کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ اس ذمہ داری کو ادا کرے گا تو خود کو جہنم سے بچائے گا اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائے گا، اور اللہ کا حکم وہ پورا کرے گا۔ اس لیے آپ کی یہ تشریف آوری ہے، آپ کا یہاں آنا یہ اللہ کے حکم کے پیش نظر ہے۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راعین، دھیان سے سنو، الا دھیان سے سنو، حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سوال ہوگا، خدا پوچھنے والے ہیں۔ مدرسے کی ذمہ داری تو کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو خدا کی ذمہ داری یاد دلاتا ہوں، اس لیے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں कि जो कड़वे तजर्बात मदरसे में होते हैं, आज मैं आपके सामने कुछ बातें दिल खोल के रखूंगा। एक तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने अरबी चारों में मोबाइल में पकड़ा गया, अरबी के चौथे साल में मिसकात शरीफ पढ़ते हुए मोबाइल में पकड़ा गया, दौरे हदीस शरीफ में आया मोबाइल में पकड़ा गया, उसके ऊपर खुदा की आँख से जो है कोई पैसों की बारिश तो होती नहीं है। और मोबाइल भी कैसे, ये अकाबिर गवाही देंगे, 40 और 45 हजार रुपये की कीमत के मोबाइल। बतलाइए बाप और वाली की मदद के लिए ये ला सकता है? 3 साल से वो पकड़ा जा रहा है, उसको कहा कि वाली को लेकर के आओ, तो आप देखिए मदरसे के साथ वालियों का क्या सुलूक है। मैं बतलाऊ, मैं घंटी हुई सबक पढ़ा के निकला तो हमारी बच्ची की जहाँ से मैं रहता हूँ 2 आदमी खड़े हो गए थे, ग्रिल का काम करते हैं, वो ग्रिल बनाने का। मैंने ताज्जुब से पूछा आप क्यों आए मदरसे में आज, तो फुलाने तालिबेली मसी मोबाइल की शिकायत आई। तो मौतिन साहब ने कहा कि वाली को लेकर जाओ, तो वो बच्चे ने मुझे फोन किया, मैं आया। मैं कहा आप उसके क्या होते हैं? न चचा न मामू न खालू न फूफा, कुछ भी नहीं, 100 किलोमीटर दूर की भी रिश्तेदारी नहीं, उस गांव के हैं और वो गांव दूर है और ये करीब में, यहाँ कारोबार के लिए आबाद आबाद है, बसे हुए हो तो पकड़ लाए इनको, ये वाली आए। मैं सवाल करता हूँ आपसे, दिल से हाथ रख के बताओ, अगर हुकूमत का कोई कानून में अगर ये बच्चा गिरफ्तार होता और बाप को बुलाया जाता तो बाप आधी रात को सब कुछ छोड़ के आता भी नहीं आता? क्या ये मदरसे इतने मामूली हो गए, ये उलमा इतने सस्ते हो गए और आपको अपनी औलाद की तरबियत की कोई पड़ी नहीं है कि बाप आने के लिए तैयार? दूर गांव वालों को फोन कर दिया, चले जाना मदरसे में, निंदा किया ना जो हुआ हो, क्या ये मिजाज बन रहा है? फिर आप फारिग होने के बाद कहने आते हो कि हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ के गया लेकिन जो है न बयान करता है न नमाज पढ़ाता है। अरे जनाब, आपने कभी 10 साल में 8 साल में कभी आके अपने बच्चे की तालीम तरबियत का कोई रिपोर्ट लिया? कभी आए आप पूछने के लिए क्या हाल हो रहा है? आज स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो सिस्टम है, आप वहां जा देखिए, बाकायदा वालियों की मीटिंग होती है, वालियों का मंडल और अंजुमन बनती है, साल में 2-4 मरतबा उनको बुलाया जाता है और जो वाली अपने बच्चों की तरबियत में फिक्रमंद हो उनको पेरेंट्स ऑफ द ईयर के एजाजात दिए जाते हैं। 23 साल के सबसे अच्छे वाली है कि जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम के लिए स्कूल का सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी का सपोर्ट किया, कॉलेज का सपोर्ट किया और आज मदरसे की तरफ से बुलाया जाए तो वाली आने दिया नहीं। आप हजरात तशरीफ लाए, बहुत मुबारक बहुत मुबारक, बहुत अच्छे काम के लिए आप लोग तशरीफ लाए। मैं आप सब वालियों को दरखास्त करूंगा खुशूस, अगर इन बच्चों को हीरा बनाना है, अगर इन बच्चों की जिंदगी को चमकाना है और इन बच्चों को अपने लिए सदकाए जारिया बनाना है, और जहां तक मैं आपकी नीयतों को समझता हूं, यही अच्छी नीयत के बारे में मुझे यकीन है कि आपने अपनी आखिरत बनाने के लिए इन बच्चों को मदरसे में भेजा है कि हमको कब्र में काम आए, कयामत के दिन काम आए, तो इनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए आपको मदरसे का साथ सहकार ताउन करना होगा, तो ही मदरसे वाले कर सकते, वरना नहीं कर सकते। अभी मुक्ति साहब मिसाल दे रहे थे, एक आदमी के घर में चार बच्चे हो गए, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो 900 बच्चों को मदरसे वाले कैसे कंट्रोल करेंगे? वालियों के सपोर्ट के लिए, वालियों का साथ चाहता, वालियों का ताउन, वालियों की मदद, ये फर्ज है, तो ही जाकर के आपके बच्चों को हम कुछ बना सकते। एक वाली, दो वाली मदरसे के अंदर हम देखते हैं इतने सालों में, जो आकर के कभी मोहसिन साहब को मिलते हो 900 तलबा में, हमें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि आप साल में बार बार तशरीफ लाइए, इस नूरानी माहौल में रहिए, ये उलमाए किराम की जियारत और मुलाकात कीजिए, इस नूरानी माहौल में आप रहिए, और आकर के उनके उस्ताद से मोहतरम साहब से इंफिरादी मुलाकात करके मेरे बच्चे की तालीम कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है, क्या कमजोरी है, क्या फरियाद है, क्या उसकी कमी है, आप आइए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, रक्त बढ़ाइए, ताल्लुक बढ़ाइए, और देखिए एक बात याद रखना हमेशा, जो वाली अपने बच्चों की कमी कमजोरियों की खास फिक्र रखते हैं, वही वाली अपने बच्चों को तरक्की दिलवा सकते हैं। इसको लिख के रखो, आकर के आप पूछिए कमी क्या है, कमजोरी क्या है, कहाँ हमारा बच्चा कमजोर चल रहा है, वो पहले मालूम कीजिए। आज तो बहुत से वालियों को आ लेके उनको हमारा बच्चा क्या दर्जा पड़ता है वो ही विचारों को मालूम नहीं, कौन से दर्जे में, कभी स्कूल में ऐसा हुआ, कौन से स्कूल में कौन सी क्लास पढ़ता है वो आपको मालूम, वहाँ तो सीनियर केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी से लेकर 10th तक 12th तक हर एक आपको जुबानी आ जाए, कहाँ है बच्चा, कब एग्जाम है, और यहाँ कुछ भी नहीं, कौन सा दर्जा पढ़ रहा है, आलिमियत पढ़ रहा है, आलिमियत में क्या पढ़ रहा है कुछ मालूम नहीं होता, बतलाइए अपने सीने पे हाथ रख के, कितने बाप ऐसे हैं कि जब ये सालाना वार्षिक एनुअल छुट्टियों में आते हैं, बेटा रिजल्ट लाओ जरा दिखाओ, कितने मार्क्स तुम्हारे आए, कितने वाले रिजल्ट देखते हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, आप इनका रिजल्ट मांगिए और रिजल्ट को देखिए, कितने मार्क्स कम आए, कितनी कमी है इनकी, और साल में बार बार आई और आकर के इनके ऊपर निगरानी कीजिए, आपका सपोर्ट होगा, ताउन होगा, तो इंशाल्लाह ये बच्चे आपके हीरे बनेंगे। और जिसे अपने बैठे हैं ये आपके जो है जिस्मानी औलाद है, तो ये असातिज़ा और मोहतरमीन साहब जो है ना, इनको अपनी रूहानी औलाद समझते हैं, अपनी सभी औलाद से ज्यादा इनकी फिक्र रखते हैं। एक किस्सा आपको कि इनको अपनी औलाद की कितनी फिक्र है, शायद हमारे हजरत मोहतरमीन साहब पसंद न करें, लेकिन मैं आपको हकी की बात बतला, ये तालीम अली में जिसने खिराज पढ़ी, आपने उसका कुरान सुना, उसके वालिद अमेरिका में रहते हैं, उसने खुद मुझे ये किस्सा सुनाया कि मैं उमरे में गया हुआ था उनके वालिद का, कि मैंने रोजे अकदस पर मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के नबी की जाली मुबारक पर मौका था, बैठे बैठे फोन किया हजरत मोहसिन साहब को, खैर खैरियत, मैंने पूछा हजरत कुछ काम मदीने मुनव्वरा से, तो क्या जुमला फरमाया, मेरे जामिया के लिए और मेरे तलबा के लिए दुआ, तो इसके वालिद ने मुझे कहा, मुझे रोना आ गया कि ये शख्स अपने बच्चों के लिए दुआ के लिए नहीं दे रहा है कि मेरे बेटों के लिए दुआ करना, जामिया में पढ़ने वाले तलबा और जामिया के लिए दुआ करना, का रोजे अकदस पर मुझे रोना आ गया कि इनको कितनी फिक्र होगी इन बच्चों के बारे में। आप मामूली मत समझो इन उलमा को, इन जिम्मेदारों को, इनकी फिक्रों को, अपनी सभी औलाद से ज्यादा आपके बच्चों की दुआ और फिक्र से कोई से करते हैं। आपका साथ सहकार होगा, सपोर्ट होगा, आपकी मदद होगी तो इंशाल्लाह ये बच्चे समझेंगे। और छुट्टी आज इस मजलिस में नियत करके जाओ कि हम अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ कर चुके हैं, कहो इंशाल्लाह। और वक्फ कैसे होता है? गालिबन इमाम इतने कईम गौजी या किसी और अकाबिर बुजुर्गों के हालात में है, मैं इनको नाम क्यों करा हूँ कि उनको उनकी वालिदा ने पढ़ने के लिए रवाना किया तो चंद दिनों के बाद वो बच्चा घर पहुंचा, साल डेढ़ साल के अरसे के बाद दरवाजा खिटखिटाया। माँ ने दरवाजा खोले बगैर पूछा कौन हो, तो बेटे ने अपना नाम बताया। तो माँ ने दरवाजा खोले बगैर कहा कि अच्छा, इस नाम का मेरा भी एक बेटा था लेकिन उसको तो मैं अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर चुकी हूँ, इल्म के लिए वक्फ कर चुकी हूँ। वो कैसे आ गया इतनी जल्दी? माँ ने दरवाजा नहीं खोला, वो बेटा वापिस चला गया और अपने वक्त का वो इमाम बना, कयामत तक के लिए उम्मत को उसका इल्म पहुंच रहा है। इस वक्त के दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस मेरे उस्ताद हमारी जामिया की जो शूरा कमेटी उसके बहुत ही अहम रुकन हजरत शेखुल हदीस मुफ्ती सईद का पालनपुरी दामद बरकात ने खुद अपना किस्सा सुनाया, हो सकता है उसमें कुछ बातें कमो बेश हो, अपने उस्ताद मोहतरम से सुनी हुई बात में आपको सुना। मेरे उस्ताद होते का मेरे वालिद ने मुझे पालनपुर में मौलाना नजीर मियां साहब मरहूम के मदरसे में सवाल में दाखिला कराया रमजान के बाद। फिर बकरी आई तो अब्बा जान मुझे रहने आए, बकरी से हो गए, अभी जिस छुट्टी से आपके बच्चे माशाल्लाह मदरसे में आए तो मौलाना नजीर मियां साहब ने मुझसे पूछे, मेरे वालिद यूसुफ भाई को कहा क्यों आए? कहीं की छुट्टी के लिए। कहा क्यों घर ले जाना चाहते हो? गोश्त खिलाना है तो हमने मदरसे में बकरे का इंतजाम किया है। अगर मुफ्ती साहब फरमाने लगे उस जमाने में हमारी गुरबत ये थी कि हमारे यहाँ घरों में बकरों की कुर्बानी होती थी, बड़े की कुर्बानी के हिस्से लग जाए थे। काम ने तुम्हारे घर से अच्छी कुर्बानी का मदरसे में निजाम किया है। अगर तुम्हारी नीयत माँ बहन को मिलवानी थी तो फिर अभी ये डेढ़ दो महीने में इतनी जल्दी और मदरसे में लाया गया थे। कबर अब्बा जान मौसमीन साहब का जवाब सुन के चले गए मदरसे का। उस वक्त एक बस हमारे गांव जाती थी शाम को 5 बजे, वहां तक मैंने इंतजार किया कि अब्बा आएंगे फिर सिफारिश करेंगे और ले जाएंगे। घड़ी में देखा 5 बजे, तो यकीन हो गया कि बस चली गई, अब्बा भी चले गए और छुट्टी भी चली गई, सब चले गए। तो हजरतुल उस्ताद मुफ्ती सईद साहब फरमाते हैं कि उस रात को पूरी रात में सोया नहीं, रोता रहा रोता रहा, जितने आंसू थे सारे आंसुओं से रो लिया। और उसके बाद जिंदगी में मौका ये आया कि 16 साल के बाद बकरी ईद मैंने घर पर दी। 16 साल के बाद तब जाकर के बेटा दारुल उलूम देवबंद का शेखुल हदीस बनता है। ऐसे नहीं बना करते बच्चे। 16 बरस के बाद का मैंने घर पर वालिदैन के साथ बीत की। ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती है। आज तो मामूली मामूली बात में छुट्टी, शादी है। अरे शादी उसमें छुट्टी का ही है। एक तो शादी सुन्नत के मुताबिक सादगी वाली होनी चाहिए और उसने इन बच्चों की तालीम का नुकसान कर हर चीज कोई शादी नहीं। और शादी का निजाम बनाना तो जब ये बच्चे छुट्टियों में आएंगे तब करवा लेना, अगर इनकी शिरकत करवा लेना। इनका सबक छुड़वा करके कुरान और हदीस की तालीम छुड़वा कर बिल्कुल शादी के अंदर मत बुलवाओ इनको। और आपको बात बताना कि हमारे प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको झूठ से तौबा अदा कर रहे हैं। झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, आपके सामने भी हमारे सामने भी। आपको भी पता नहीं घर पर क्या क्या झूठ बोलते होंगे कि मदरसे में तो बहुत हालात है, खाना भी चलता नहीं और पैसे लाते हैं आपके पास। यहाँ माशाल्लाह इनके लिए शानदार वजीफे का इंतजाम है, बेहतरीन इनको पैसे मिलते हैं। जो तलबा घरेलू एतबार से कमजोर है और दर्जे इसमें तो सबके लिए आला से आला किस्म के पैसों के वजीफे का इंतजाम है, लेकिन फिर भी याती हाँ इसको हाँ इनको ले मकान जितना मिले वहां से लेने की इनकी एक आदत। फिर तो झूठ बोलते हैं कि वहाँ मदरसे में कभी खाना नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गनीमत है खाना, वजीफा पैसे कैश बहुत अच्छे मिलते हैं, फिर भी ये झूठ बोल के घर से पैसे लाते हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ, एक तालिबे को मोटे मुसाद के पास गया, मेरी बहन का इंतकाल हो गया सबकी लोग। अब कोई भी वाकया होता है ना तो उस वाक्य के असरात होते हैं दिल पर। तो मोटे साहब फरमाने लगे मुझे यकीन नहीं आया इसकी बात पर कि बहन का इंतकाल हो गया। तो उस जिस बस्ती का वो तालिबे में था उस बस्ती के एक मौलाना साहब हमारे यहाँ जामिया से पहले शिवरा के रुक में भी रह चुके थे, उनका नंबर था। मोहसिन साहब ने फोन किया उनको कि आपके यहाँ किसी नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। तो मौलाना फरमाने लगे कि मैं मकतब में था, अभी निकल के आ रहा हूँ, कोई हादसा हुआ तो पहले मुझे इत्तला होती है, पूरी बस्ती की वो मरकजी शख्सियत है, मरकज के मकतब के सदर मुदरिस थे, तो मुझे पहले इत्तला होती है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। हो सकता मदरसे में था, अब मैं निकल के तहकीक करता हूँ। तहकीक की छानबीन की नहीं किसी का इंतकाल नहीं हुआ। फिर नाम के साथ का फुलाने तालिबे इल्म के घर मालूम करो, कहा नहीं कोई इंतकाल नहीं हुआ। कहा देखो ये तो छुट्टी लेने के लिए जिंदा बहन को भी मार डाल दिया, इनके झूठ का आलम ये है। तो इनको आप नसीहत करके जाओ कि बेटा अब तेरा घर मदरसा है, तुझे मदरसे में रहना है, खामोखा छुट्टियां नहीं लेनी है तुझे, शादी मौत मजबूरी जैसे नाम के ऊपर। एक दिन का सबक सोचता है 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान है। इनको आपने वक्फ किया है मदरसे, और देखिए मोबाइल के सिलसिले में आप उनको खूब नसीहत करके जाओ कि बेटा मोबाइल नहीं है, आपको खैर खैरियत मालूम करनी हो ये अपनी खैरियत आपको बतलाना चाहे। यहाँ मदरसे में निजाम है, दोपहर में शाम में रात में कौन है यहाँ पर जिसके जरिए आपको खैर खैरियत बतला सकते हो। बिल्कुल मोबाइल मत दीजिए। ये आईफोन जो मोबाइल कंपनी है उसका बनाने वाला जिसकी ये कंपनी जिसे इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार समझा जाता है, उसने खुद लिखा है किसी को अगर रेफरेंस और हवाला चाहिए तो मैं दे सकता हूँ कि मैंने अपनी औलाद को मोबाइल नहीं दिया इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैंने इसमें क्या जहर भरा हुआ। खुद आईफोन बनाने वाला लिखता है कि मैंने अपनी सभी औलाद को मोबाइल नहीं दिया, मुझे मालूम है मैंने इसमें क्या जहर भरा हुआ है, कंपनी का मालिक लिखता है। और फिर आज ये बच्चे हमें ताज्जुब होता है इनके पास 50,000 रुपए की कीमत के मोबाइल पकड़ जाते हैं। जो मोबाइल नए लॉन्च होते मार्केट में वो इनके हाथ में होते हैं, कहाँ से लाते इतना पैसा। इसीलिए आप इन बच्चों को खुसूसी नसीहत करो, 200 वाला भी नहीं, 2000 वाला भी नहीं, 20,000 वाला भी नहीं, बेटा मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ये जहर बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको मालूम है फ्रांस दुनिया का इतना तरक्की वाला मुल्क है, अभी जो पिछला इलेक्शन गया उस इलेक्शन के अंदर जो अलग अलग पार्टियां खड़ी रहती है उसमें एक आदमी जो प्रेसिडेंट का उम्मीदवार जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है उन्हें इलेक्शन के अंदर ऐलान किया कि अगर मैं जीत गया और मेरी हुकूमत बन गई तो मैं पूरे फ्रांस की स्कूलों के अंदर मोबाइल पर पाबंदी लगाऊंगा। उसने ऐलान किया इलेक्शन की तारीख में, और वालियों ने, ये यूरोप के गोरों की बात कर रहा हूँ जो अपनी औलाद की तालीम तरबियत के कितने फिक्रमंद, उन वालियों ने उस प्रेसिडेंट को वोट दिए और वो जीत गया और उस वक्त ये फ्रांस का प्रेसिडेंट बना हुआ है, सदर बना हुआ है, और उसने आते ही वादा पूरा किया। इस वक्त पूरे फ्रांस की स्कूलों के अंदर टीचर भी नहीं, बच्चे भी नहीं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वक्त कानून है। जब एक दुनिया स्कूल के अंदर वो ये समझ रहे हैं कि इन मोबाइल के जरिए बच्चों की, और ये यूरोप की बात कर रहा हूँ आपको, तो फिर ये हमारे बच्चों को ये मोबाइल देकर हम जहर दे रहे हैं, स्वीट पॉइजन दे रहे हैं, मीठा जहर पिला रहे हैं इन बच्चों को, इनको ताकीद करके जाओ कि बेटा मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। कहोगे ये बात पूरा वादा करो। और देखिए क्रिकेट का खेल ये अब खेल नहीं रहा, ये जुआ है उस वक्त। आप रोजाना अखबार पढ़ते हो, हमसे ज्यादा हालात जानते हो, ये फिक्सिंग होते हैं, ये होती है, ये जुआ है, ये खेल नहीं है। और जुए को कुरान ने हराम करार दिया, खुदा ने बचने का हुक्म दिया, ये जुगाड़ है। और ये क्रिकेट का खेल आप भी सुन के जाइए, हमारे मदरसे के शेखुल हदीस इस वक्त के मुल्क के दुनिया के बहुत बड़े बुजुर्ग और मुफ्ती हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामन बरकातुहू क्रिकेट के खेल को नाजायज और हराम बतलाते हैं। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े नामवर मुफ्ती हजरत मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रहीमिया में क्रिकेट को नाजायज लिखा है। इंटरनेशनल लेवल के बुजुर्ग हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्रिकेट को नाजायज लिखा है। ये सारे हमारे अकाबिर इसको नाजायज लिख रहे हैं, ये जुगाड़ है, जुआ है इस वक्त का। आप इन बच्चों को समझा के जाओ, बेटा क्रिकेट के चक्कर में है भी नहीं पड़ रहा, तोबा करो इस खेल से, इसकी तरफ ध्यान भी मत दो, न उसकी कॉमेंट्री सुननी, न उसका स्कोर देखना, न उस पर दिलचस्पी रखना, आप उनको खुसूसी ताकीद करके जाइए। और पैसों के बारे में खूब कंट्रोल करो, खूब कंट्रोल करो पैसे के बारे में। जितने पैसे आप ज्यादा देंगे, उनको अगर किताब खरीदनी है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ किताबें जहाँ जहाँ से मिलती है डायरेक्ट उस किताबों के बेचने वालों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, बेटा तुम किताब खरीद लो, मैं आपका पैसा चुकवा दूंगा, बहुत अच्छी बात। अगर ये अच्छी अच्छी किताबें अपने उस्तादों के मशवरे से खरीदे, लेकिन हाथ में पैसा देना इन बच्चों को जहर पिलाने के मायने में बहुत कंट्रोल। बास तलबा के बारे में क्रेडिट कार्ड यहाँ लेकर है, दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस पच्चीस तीस तीस हजार जितनी इन असातिज़े किराम की तनख्वाह देंगे, इससे ज्यादा तो बास बच्चों के खर्चे होते माना। ये आपके बच्चों को बिगाड़ने वाली चीज है, ज्यादा उनको पैसे की आदत बनाए। वक्त बहुत है लेकिन मैं आपको इबरत के लिए सुना, एक ताल्लुक वालों ने एक शख्स की औलाद नहीं, बहुत करोड़पति रईस आदमी, किसी ने मशवरा दिया कि आप हरमे में जाइए हज उमरे के लिए, काबा पर पहली नजर पड़ती है तो दुआ कबूल होती है, आप वहां जाके औलाद की दुआ कीजिए। वो बेचारा कभी तो उमरे हज के लिए गया नहीं, औलाद के नाम पर गया और काबतुल्लाह की जियारत हुई तो उसने दुआ की, अल्लाह मेरे घर में एक बेटा आता था, दुआ कबूल हो गई, बेटा हुआ। बड़ी उम्मीदों के बाद आरजुओं के बाद अब उस बच्चे को रेल ट्रेन में
और दौलत की फरावानी, पैसों की आजादी, बाइक, मोटरसाइकिल, मोबाइल, गाड़ियां, हर चीज की आजादी में वो बच्चा बड़ा हो गया। और माँ बाप की बेजा और गलत चक्कर से वो आवारा बना, आजाद बना, गलत कामों में, लड़कियों के चक्कर में, फिल्मों में, ड्रग्स में, नशे में, इन चीजों में माँ बाप का नाम, खानदान का नाम बदनाम हो रहा है। माँ बाप परेशान, कोई हल समझ में नहीं आता, क्योंकि बचपन में तरबियत नहीं हुई, बहुत परेशान। लोग कह रहे मशवरा लिया तो लोगों ने कहा पैसों पर कंट्रोल करो तो तुम्हारा बेटा काबू में रहेगा। तो जो बाप कंट्रोल करने से भी गया, पहले रोजाना 10,000 उड़ाता था, 8,000 दिए, 2,000 कम किए, फिर कम किए, फिर कम किए, अब उसका सर्कल रोजाना शाम को घूमना, खाना पीना, तफरी, पैसे कम होने लगे, बच्चा परेशान, ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों के साथ मशवरा कर रहा है कि ये बाप पैसे कम कर रहा है, हमको पैसे ज्यादा चाहिए, तो क्या करना। तो कहा आपसे एक ही रास्ता है कि तेरा बाप मर जाए और सारी प्रॉपर्टी तेरे हाथ में आ जाए, आजाद होकर के तू जो है उड़ाओ, मजे करो। तो कहा अच्छा बाप मरे तो कब मरेगा, तो मरता भी नहीं। तो आप यकीन मानिए, उसको किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि तू उमरा करने जा, काबा पर नजर पड़े तो तेरे बाप की मौत की दुआ कर जा करके, तो ये मरे और तुझे पैसों की आजादी मिले। जिस काबतुल्ला का सफर करके इस बेटे के लिए दुआ की थी, आज वही बेटा अपने बाप की मौत के लिए काबा का सफर करने जा रहा है। पैसों की आजादी, आवारगी, अय्याशी, कंट्रोल करो इनके ऊपर। जितना ये मुजाहदे में इल्म हासिल करेंगे, तकलीफ के साथ इल्म हासिल करेंगे, इतना इनकी जिंदगी में चमक आएगी, परवान करेंगे, तरक्की होगी इतनी इंसान। कंट्रोल करो इनके ऊपर। और ये तो शरीयत का कानून बतला रहा हूं, कुलू वशरबू वला तुश्रिकू, कुलू वशरबू वला तुश्रिकू, खाओ पियो, लेकिन ये उड़ाना, हद से ज्यादा खर्च करना, और उसने भी गलत कामों में, मोबाइल, गाना, फिल्म, इन चीजों में, इसको तो शरीयत ने हराम करार दिया। वला तुबद्दिल तबदीला, इन्नल मुबद्दिलीन कानू इख्वानल शयातीन, ये उड़ाने वाले, गलत कामों में लगाने वाले, ये शैतान के भाई है, इनके पैसों पर कंट्रोल करो, बहुत जरूरी है। मोबाइल और जरूरत से ज्यादा पैसे, ये बच्चों के बिगाड़ के बहुत बड़े अस्बाब हैं। शबाज वाली बाल की शिकायत लेता है कि मदरसे वाले कैसे जालिम है, बच्चों के बाल कटवा देते हैं। जालिम नहीं, ये बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ये बच्चों के बाल जो होते नहीं है ना, तो इनको इधर उधर की आवाज की सूझती नहीं है। बाल हो तो सर पे बाल है तो ये जेब में टोपी रख देंगे, और बाल नहीं होंगे तो टोपी जेब में रखने की हिम्मत नहीं होगी उनको, सर पे टोपी पहन के घूमेंगे। और देखो हमारे ये बाल, हमारे हम जमाने जो सारे में जमाने में साथ से ये मदरसी नजरात इस वाक़े की शहादत देंगे। दौरे हदीस शरीफ के 3-4 तालिब इल्म बाल के मसले में जामिया छोड़ के भाग गए, दौरे के तलबा। कानून आया जब बाल कटवा, तो हम नहीं कटवाते, हम दौरे वाले चले गए मदरसा छोड़कर, दूसरी जगह जाके दौरे हदीस शरीफ से तकमील कर ली, दाखिला कर लिया दूसरी जगह। अल्लाह को गवाह रख के कहता हूँ, उन भागने वाले तलबा में से एक मौली साहब कई सालों के बाद मुझे मिले इंग्लैंड में, टोपी निकाल करके उसने सर झुका के बतलाया, कहने लगे حضرت موتنی صاحب مرحوم کی کیا دل کی آہ لگ گئی مجھے کہ قدرتی میرے سارے بال ختم ہو گئے, قدرتی سال ہو گئی مجھے, سب بال چلے گئے. کیسی بال کٹوانے پر ہم نے 3 مہینے باقی سے جامعہ چھوڑا تھا. قدرتی طور پر کہا حضرت موتنی صاحب مرحوم کی کیا دل کی آہ لگ گئی ہم کو کہ قدرتی طور پر ہمارے سارے بال ختم ہو گئے, آج سال پڑ گئے. اس لیے کہ یہ سب اللہ والے ہیں, ان کی آہ اور بد دعا بھی کوئی معمولی نہیں ہے. یہ تو دعائیں کرتے ہیں رات دن, لیکن کبھی کوئی ایسی ٹھوکر لگے تو انسان ہے, کھینچنے لگتی ہے ان کے دلوں کو. اس لیے یہ بال کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ بال کی صفائی بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور یہ کوئی مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے آ کر کے آپ مدرسے میں ہنگامہ کھڑا کریں؟ اور دیکھیے ایک بات میں آپ کو اور کہوں, جب بچوں کی فریاد جاتی ہے نا تو ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم بچوں کی طرف داری کرتے ہیں, بچوں کی بات مانتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں علماء اساتذہ مدرسے کے ذمہ داروں کی بات نہیں مانتے, ان کو جھٹلاتے ہیں. یہ غلط عادت ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت چاہتے ہو تو ایک ضابطہ بنا لو کہ بچے جو کہیں گے ہم نہیں مانیں گے, اور یہ حضرات علماء ذمہ دار جو کہیں گے اسی بات کو ہم مانیں گے, تو انشاءاللہ یہ بچوں کی بہتری کریں گے. اپنی اولاد کی تعلیم تربیت میں کبھی ان کی طرف داری مت کرو, یہ جو کہے وہ مانو. ایک بچہ بہت جاتے تھے, ہمارے سامنے کا قصہ ہے, عبرت کے لیے سناؤں میں آپ کو. جماعت والے جاتے ویکیشن میں, ذرا بھیجو اسکول کی چھٹیاں ہیں, تو کہا یہ جماعت والے کہتے ہیں اسکول کی چھٹیوں میں ہی بچے کو چینی چینی بیٹھنے دیتے, جماعت میں لے جاؤ جماعت میں لے جاؤ. سال بھر سے ہی اسکول جاتے ہیں, ویکیشن میں بھی اسکول ان کو جماعت میں بھیجیں گا؟ نہیں بھیجا, نہ کسی عالم کی خدمت میں. اور مدرسہ بھی جو آج کل آپ حال ہے جانتے, دن بھر اسکول ٹیوشن, شام کو وقت ملا تو تھوڑا سا مدرسے کا ٹیوشن کرا دیا. تعلیم تربیت نہیں ہوئی, ڈگری تو ملنے سے رہی, لیکن بڑا ہو کر کے وہ بچہ ایسا آوارہ بنا کہ صرف خاندان کے لیے نہیں اس بستی کے تمام مسلمانوں کے لیے خطرے کا ذریعہ بنا. غیر مسلم کی لڑکی کے ساتھ وہ چکر میں پڑے, پوری بستی کے مسلمانوں کے لیے خطرے کا ذریعہ بنے. اب وہ ہاتھ جوڑتا ہے مولویوں کو, مولانا اس کو مدرسے میں پڑھاؤ, جماعت والوں کو اس کو چلے میں 3 دن میں لے جاؤ, میرا بچہ گزر جاؤ. وہ زمانہ گزر گیا جب اس کی تربیت کرنی تھی. ایک چھٹی کے معاملے میں ایک طالب علم جمعرات کو جلدی چلا گیا دوپہر میں, اتفاق دوپہر کے بعد کے گھنٹے میں حاضری نے نام پہنچ گیا. اس کے والیوں کو بلایا, والیوں نے کچھ دباؤ دیا. یہ بھی ایک آج کل مزاج ہے کہ انتظامی امور میں بیجا دباؤ ڈلوانا اور قانون کے خلاف ورزی کروانا. موتنی صاحب نے مجبوری میں اس بچے کو سزا کینسل کی, پڑھنے لکھا دیا. وہ بچہ بعد میں اس وقت حال یہ ہے کہ نہ ماں باپ کا ہے نہ بھائی بہن کا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ یہ مولوی ہے کہ مسلمان بھی ہے. اس حال میں اس وقت وہ زندگی گزار. ایک دن غیر حاضری میں موتنی صاحب نے جو سزا تجویز کی کہ تجھے ٹکلا ہونا ہے, میں نہیں ہوں گا, آپ سے جو وہ کر لو دباؤ ڈلوا, اور پھر داخلہ کروا لیا. خدا کا تقویمی نظام بھی کوئی چیز ہے, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. دنیا کی تمام طاقتوں کے خلاف اللہ کا کوئی تقویمی نظام بھی ہے. آج اس وقت وہ طالب علم اس حال میں کہ اس کا مسلمان ہونا بھی پہچاننا مشکل حل میں. اس لیے یہ جو قوانین ہیں مدرسے کے اندر, یہ قوانین
आपके बच्चों के फायदे के लिए, इसमें बड़ी तरक्की आपके बच्चों की, आप इसमें पूरा साथ दीजिए और आप इसमें पूरा ताउन कीजिए, इंशाल्लाह इसमें आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खैर भलाई। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ मैंने आपके सामने पढ़ी, आप नमाजों में आखिरी कायदे में अत्तहियात दुरूद के बाद अपनी औलाद की नियत से इस दुआ का एहतमाम कीजिए जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने मांगी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ। दूसरी दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा। तीसरी दुआ मेरी इब्राहिम अलैहि सलाम की, रब्बि जालनी मुकीम अस्सलाति वमिन ज़ुर्रियती। ये दुआएं जो अल्लाह ने कुरान में बतलाई, नमाजों में भी पढ़िए, नमाज के अलावा भी पढ़िए और खूब दुआएं मांगिए। औलाद के लिए बाप की दुआ ये सबसे बड़ी ताकतवर दुआ है। वादा करके जाइए कि इंशाल्लाह सलातुल हाजा बार बार पढ़ के औलाद के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप हजरात की जामिया की सामत को कबूल फरमाए और जो बातें आपके सामने कही गई, हो सकता है उसमें कुछ सख्त बातें भी हो गई हो, लेकिन आप जो है इसको अपने खैर ख्वाही पर महमूल करें। दाढ़ी लिबास कुछ सिलसिले में भी आपको कहा गया और रास्ते के लिए कि बार बार आइए आप साल में यहाँ पर और आकर के वाली और मौजूदी आपके असातिज़ा से मुलाकात कीजिए, बच्चे की कैफियत मालूम कीजिए और कभी बच्चा घर फोन करे तो उसके बेटे ये मोबाइल वगैरह कहाँ से आया ये भी पूछना चाहिए उससे। और देखिए एक बात जो हजरत मुफ्ती अबूबकर साहब ने फरमाई है वो मैं कह ही देता हूँ आपके सामने। इस वक्त दुनिया और हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, इन हालात में भी हमारे बच्चों को मोबाइल और इन चीज़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारी संस्था तंजीम ऐसी है जिनके ऊपर हमारे मुल्क में कानूनी तौर पर पाबंदी है। अगर ऐसी संस्था, ऐसी कोई तंजीम, ऐसी कोई तहरीक, ऐसी कोई मोमेंट, ऐसी कोई सरोवर के साथ आपके बच्चे का ताल्लुक हो गया तो मदरसे और खुद आपके खानदान के लिए वो चीज़ खतरा बन सकती है और बड़ी खतरनाक बन सकती है, मामूली नहीं बड़ी खतरनाक बन सकती है। उसमें आपकी दौलत, आपकी इज्जत सब कुछ पामाल हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस वक्त, अब ये क्योंकि खिलती उम्र के बच्चे हैं, जज्बाती है तो ना सुनने की चीज़ें मोबाइल पर सुनते हैं, या इनके असातिज़ा माशाल्लाह खूब बयान करते हैं, हर सेंटर को बयान होता है, बूथ को बयान होता है, मौके मौके से बयानात होते हैं, ऐसी सिलाई मजलिस होती है, लेकिन ये मोबाइल में जज्बाती बयानात डाउनलोड करवाते हैं और फिर वो जज्बाती बयानात सुनते हैं और फिर ऐसे बयानात सुनते हैं जिन बयान करने वालों पर मुल्क में पाबंदी है, या ऐसे बयानात सुनते हैं मसलन जिहाद के मुताबिक और लोगों में जोश फैलाने के मुताबिक, हिंदू मुस्लिम में मुनाफरत के मुताबिक ऐसी जज्बाती तकरीर है। यकीनन हम लोग मुसलमान हैं, जिहाद कताल हमारे इस्लाम में है, लेकिन इसकी हकीकत अभी इन बच्चों ने समझी नहीं है, बस वो तो एक जज्बात में आते हैं और ऐसे बयानात सुनते हैं।
اور وہ بیانات سننے کے نتیجے میں اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو جاسوسی نظام ہے اتنا تیز ہے کہ اگر یہ انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے ایسی کوئی عالمی تنظیم کے ربط میں رہتے یا ان کی ویب سائٹ کو کھولتے یا ان کے کال کو ریسیو کرتے یا ان کا کال آتا ہے اور وہ اٹھاتے نہیں ہیں تو بھی یہ ملک کی خفیہ ایجنسیوں کی نظر میں آ جاتا ہے. ابھی جو دو قصوں کا حوالہ دیا، ایک بانا مدرسے کا، ہمارے بزرگوں کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، میں کھل کے بات بتلا دوں کیونکہ یہ تو نیشنل ایجنسیوں تک پہنچا ہوا قصہ ہے، کوئی چھپی چھپی بات نہیں ہے. مدرسے میں ایک طالب علم کے پاس مہمان آیا، ابھی آپ مہمانوں کے لیے سن رہے ہیں. وہ مہمان سرکار کی نظر میں کوئی معاملہ ہوگا، اس کی وجہ سے وہ مہمان حکومت کی نظر میں، اور وہ آ کر مدرسے میں طالب علم کے پاس دو تین دن ٹھہرا اور چلا گیا. کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ صرف سی بی آئی نہیں، سی بی آئی سے اوپر ہوتی آئی بی، اور اس سے اوپر نیشنل انویسٹیگیشن، وہ تنظیم ایک مہینے تک باندہ شہر میں مقیم رہی، مدرسے کے تمام کال ریکارڈ کیے، کون مدرسے میں آ رہا ہے جا رہا ہے ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد اچانک مدرسے کے اوپر ایک دن چھاپہ مارا، پورا مدرسہ. حضرت مولانا سید حبیب صاحب رحمت برکاتہ اس وقت وہاں پہ ناظرین ہیں، وہ یہاں گجرات تشریف لائے، ہوائی جہاز سے اترے اور وہاں مدرسے میں یہ چیکنگ آئے، فوراً میری ملاقات ہوئی، وہ ایئرپورٹ سے اتر کے آئے حیران پریشان، دوسری فلائٹ سے واپس گئے، مدرسہ بھی پریشان، اور پورے مدرسے کے ذمہ داروں کو دلی ان کے ہیڈ کوارٹر پر بلوایا، وہ بچہ پریشان، فیملی پریشان، گھرانہ پریشان، ایک مہمان کو تین دن ٹھہرانے کی وجہ سے. اور وہ مہمان بھی کیسا، وہ نظر میں، کیوں نظر میں؟ وہ کوئی پاپی نہیں، اس کا کسی پاپی سے کوئی تعلق تھا، وہ خود مجرم نے، اس کا کسی سے تعلق، اس کے نتیجے میں یہ حال ہوا مدرسے کا. ایک طالب علم نے غلط جگہ سے فون آیا، انٹرنیشنل کال، پاکستان سے، سیریا سے، بغداد سے، عراق سے، جہاں اس وقت ایسی تنظیمیں کچھ کام کر رہی ہے جن کے نام ہم نیٹ پر سنتے ہیں، حقیقت اللہ جانے، جو ہمارے ملک میں ممنوع ہے، وہاں سے کال آیا. اس طالب علم نے فون نہیں اٹھایا، صاحب سنو، فون نہیں اٹھایا اس طالب علم نے، لیکن اس نمبر سے کال آیا، اسی کال کے نتیجے کے اندر وہ طالب علم واچ پر آیا، نظر پر آیا آئی ٹی والوں نے، ایس سی ایس یعنی اینٹی ٹیرسٹ کوڈ والوں نے اس بچے کا فون نظر پہ رکھا، اور وہ چھٹیوں میں گیا ہوا تھا گھر، مدرسے نہیں ہوا. پھر وہ جب مدرسے کے اوپر آ گیا تو رات دو بجے پولیس والوں نے آ کر مدرسے سے بچے کو اٹھایا، اس کے گھر پر ریڈ پڑی، یہاں بھی ریڈ پڑی، اٹھایا اس کو، تو ایک کال کی وجہ سے، حالانکہ کال اس نے اٹھایا نہیں تھا لیکن غلط جگہ سے کال آیا تھا. اب گھر پریشان، خاندان پریشان، یہاں مدرسے والے پریشان، نوسط یہ موبائل ہے. اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ موبائل اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ پورا، آپ کا خاندان بھی پریشان ہو سکتا ہے، ساتھ میں مدرسہ بھی پریشان ہو سکتا ہے. اللہ واسطے اپنے بچوں کو موبائل مت دو، یہ بہت خطرناک چیز ہے. پھر سے آپ تمام والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اہم کام کے لیے آپ لوگ تشریف لائے.
देखो इतनी सारी खराबी आपने मोबाइल की सुन ली, खतरात सुन लिए। अब मैं एक बात आपसे सवाल करूँ, हमारे यहाँ में भी ये मसला मौजूद है जो इस तरह हराम चीज़ों के मुताबिक जैसे मसाइल आते हैं, तो अगर आप लोग अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा भविष्य चाहते हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपके बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहे इसमें आप हमारा साथ देते हो, अच्छा फिर कदम आगे की बात अब मैं आपको पूछूं, अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल पकड़ा गया तो आपकी इजाजत है कि हम तोड़ डाले उसको? कौन वाली कहता है हाथ उठा? माशाल्लाह, देख लिया ये पूरा मजमा गवाह है, क्या उसको तोड़ ही डालेंगे? इजाजत है आपकी तरफ से? इंशाल्लाह इस पर अल्लाह आपको अजर अता फरमाएंगे और आपके बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत होगी। एक अजीब ताज्जुब की बात, ताज्जुब और वो भी अजीब कि बहुत से हमारे यहाँ जब एडमिशन होता है दाखिला फॉर्म, तो उसमें इनको पूछते हैं बच्चों को कि भाई आप फीस भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे, तो बहुत से वाले लिखते हैं नहीं माफी हम तो कमजोर है, घरेलू हालात इतने नहीं कि फीस भर। हालांकि मदरसे में फीस कितनी है सर? एक महीने की 700 रुपए में तो जो है ना गुटखा भी नहीं आते एक महीने से, हालांकि वो गलत चीज है। 700 रुपए फीस, मैं आपको हिसाब लगाऊं कम से कम एक बच्चे के ऊपर 2000 से ऊपर का खर्च माना होता है, लाइट पानी बिजली हर चीज का। हमारा बच्चा जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है इसका खर्च अगर हम जमा करवा रहे तो इंशाल्लाह उस पर हमें सवाब ही मिलेगा, यकीनन सवाब मिलेगा। आज स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, गाड़ी लाने ले जाने वाले में हम फीस नहीं देते तो फिर ये तो सवाब का काम। यहाँ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, तो आपका दिल ये नहीं चाहता कि हम पूरी फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाएं? चलो मान लिया कि जिन वालियों की हैसियत में अब वो लिखते हैं फी नहीं माफी, घरेलू हालात बहुत कमजोर है। अब आगे की बात मैं आपको बताऊँ कि ऐसा चीज़ा जो चेकिंग करते हैं, इनकी सर्वे रिपोर्ट जो मिलती रहती है वो ये कि जो बच्चे माफी वाले हैं, जो बच्चे फीस नहीं भरते, ज़्यादातर उन्हीं बच्चों के पास से मोबाइल पकड़े जाते हैं। तो ये तजाद और विरोधाभास कैसा कि आपके पास मदरसे में जमा कराने की फीसें नहीं है और बच्चों के पास 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 का मोबाइल पकड़ा जा रहा है। तो ये तो एक अमली झूठ है कि वहाँ लिख रहे कि हमारी हैसियत में और यहाँ बच्चों के पास इतने बड़े बड़े मोबाइल पकड़े जा रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर आप खूब ध्यान दें, तवज्जो दें, कोशिश करेंगे। ये हजरत जो फिक्र करते हैं इनकी कोई बात बाकी रह गई है आप लोगों को? जो मैंने शुरू में आपको किस्सा सुनाया था कि भाई बच्चों की जो असल वाली है, जो उनको कुछ कह सकते हैं, जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो बहुत से इस वक्त भी नहीं आए। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ताली है कि जो हाजिर हो गायबों को बात पहुँचा दे। तो घर जाकर के आप इन बच्चों की माओं को भी और उनके मामू नानाओं को भी ये बातें पहुँचा दो, तो हमोखा इनको इस तरह पैसे देकर मोबाइल देकर बिगाड़ के न रहे। और देखिए इस साल तो हमारे मदरसे में बहुत सहूलत वाला कानून आ गया, बहुत सहूलत वाला, एकदम राहत वाला। कि भाई ये बच्चे सफर में आते हैं तो समझते हैं कि भाई मोबाइल की ज़रूरत रहती है, रास्ते में कुछ काम पड़ गया तो सादा सिंपल 200-400 रुपये वाला मोबाइल, सफर की जरूरत के लिए जो दूर से बच्चे आते हैं, हम समझते हैं जरूरत को। तो मदरसे ने बहुत अच्छा कानून बनाया कि भाई आप छुट्टी के बाद जिस दिन मदरसे पहुंचे, आकर के मदरसे ने नाम लिखकर अपना मोबाइल जरूर करा दो, और जब आप छुट्टी आएगी तब लेकर के जाओ। कितनी अच्छी सिस्टम है कि सफर की जरूरत के लिए सादा सिंपल मोबाइल घर से लेकर आए। तो आप सब वाली साथ में आए हैं, अगर इनकी जरूरत है सफर के लिए मोबाइल है, तो आप अपने हाथ से जिन उस्ताद के पास आप गए थे फार्म के लिए, उन उस्ताद को नाम लिखकर जमा भी करवा दें कि मेरे बेटे का मोबाइल है। अब जब चश्मा इम्तिहान की छुट्टी होगी, उस दिन आप उनको घर जाते वक्त पर मोबाइल लेना, और फिर जब घर से आएगा तो आकर के आप फिर उसको जमा कर लेना। ये काम अपने हाथ से करवा के जाओ, करोगे ये काम? और सबसे बड़ी चीज अपनी औलाद के लिए दुआओं का एहतमाम करोगे, खूब दुआओं का एहतमाम करो। अल्लाह ताला आपकी ताकत को मुबारक फरमाए, मकबूल फरमाए, और कोई बात इधर उधर हो गई तो अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, और औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में जो जिम्मेदारी है अल्लाह उसका हक अदा करने की हमें मौजूद अदा फरमाए। الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وهدنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں آج سب جو کوتاہی ہوئی محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیجیے، اے اللہ ہماری اولاد کی آپ اپنی شان ربوبیت سے بہترین اسلامی تعلیم اور تربیت فرما، اے اللہ آپ رب العالمین ہیں، مربی حقیقی ذات اللہ آپ ہی ہے، اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی محض اپنے فضل و کرم سے بہترین اسلامی دینی تعلیم اور تربیت کر دیں، بری عادتوں سے، بری دوستی سے، بری چیزوں سے، بری صحبتوں سے، ہر حرام چیز سے اے اللہ ہماری اولاد کی مکمل حفاظت کر دیں، اے اللہ ہماری اولاد کو حفاظ قرآن، علماء دین، داعی ذاتی ذاتی مبلغ بنا دیں، اے اللہ ان کو دین کی مقبول خدمات کے لیے پسند فرما دیجیے، اے اللہ یہ جتنے بھی طلباء جامعہ کے اندر آئے ہیں، اے اللہ ان تمام کے والیوں نے جن مبارک جذبات کے ساتھ ان کو بھیجا، اے اللہ ان کی اولاد کو بہترین علم عمل صلاح و صلاح سے مالا مال فرما، اے اللہ یہ آپ کے بندے دور دراز سے سفر کر کے محض اپنی اولاد کی تربیت کی فکر پر جامعہ کی دعوت پر پہنچے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے، ان کو آنے کو اپنی رضا اور دلیل ذریعہ بنا لیجیے، جامعہ کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی رضا اور آپ کے منشے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری سب کی اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے، کامل مکمل مسلمان بنا دے، کامل مکمل مسلمان بنا دے، ہر طرح کی اختلاف سے اس کی حفاظت فرما دے، ہر طرح کی اختلاف سے حفاظت فرما دے، ہر طرح کی اختلاف سے حفاظت فرما دے، اے اللہ جامعہ کمیونٹی عملی افرادی ہر نو کی خیر کی ترقیات سے مالا مال فرما، ہر بھی داخلی گاڑی کی باقی بجنوں میں ہم سب کی حفاظت فرما، پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرما، حضرت نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की खैर मांगी, हमें और कोई उम्मत को अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शुरू से मना चाही, अल्लाह हमारी और कोई उम्मत की हिफाजत फरमा, जो कमी कोताही के रहने में हुई अल्लाह अपने करम से माफ फरमा दीजिए, और इस मजलिस को और अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा दीजिए। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा सभी कल्याण।
हमारे मेहमान मेरा बहुत